દેવલાલીમાં પૂજ્ય ભાઈ શ્રી લાલચંદભાઈનું તારીખ 20/10/87 સમયસાર ગાથા 49 ઉપર પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 229.
આજથી 25 વર્ષ પહેલા સિકોહાબાદમાં કાંતા માતા અને રવિન્દ્રભાઈ પિતા અને ગુરુમાનો જન્મ થયો, અણમોલ રત્નનો જન્મ થયો. નાની વયથી જેને વૈરાગ ઉત્પન્ન હતો અને એક સામાજિક શિક્ષણ મેળવવા સ્કૂલમાં જતી હતી ત્યારે પણ અને એના જે શિક્ષક એ લેડીઝ હતા, લેડી સ્કૂલમાં ભણવા જતા એ ભણાવતા ભણાવતા એક વખત એ પ્રોફેસર બેન બોલ્યા કે હું તને ભણાવું છું પણ પછી મને એમ લાગે છે કે તું મને ભણાવીશ. એ વિચારી છે એમ એમને પોતે એના શબ્દમાં કહેલું. નાની વયથી જેને વૈરાગ હતો અને લગભગ 12-13 વર્ષની ઉંમરે એક બાળ બ્રહ્મચારી રવિન્દ્રભાઈ રવિન્દ્ર ભયા કરીને અત્યારે પણ છે એ પુરુષ એમના પરિચય માહિતી આવ્યો અને તેને જે જોતું હતું તે તેની પાસેથી મળવા લાગ્યું. એ રવિન્દ્રભાઈ બાળ બ્રહ્મચારી એની ગુરુદેવનો પરિચય એક વખત થયેલો અને ત્યારે સંધ્યાબેન પણ એની સાથે 15 દિવસ ગયેલા. એ રવિન્દ્રભાઈ પાસેથી એને દ્રષ્ટિનો વિષય, દ્રષ્ટિની મુખતા એનું અત્યારે પણ પ્રવર્તન ચાલે છે. લાયક પાત્ર જીવ છે, પાત્ર જીવને પાત્ર જીવની મુલાકાત થઈ ગઈ છે. પોતાને જેની ભૂખ હતી શુદ્ધાત્માનું સ્વરૂપ સમજ્યું હતું, એ શુદ્ધાત્માનું સ્વરૂપ એમની પાસેથી એને મળવા મળ્યું. તેમ તેમ રવિન્દ્રભાઈ પણ એ 12-13 વર્ષની નાની બાળિકાને ઓળખી શકા કે આજે ભૂખ દીધો છે. એમના પ્રત્યે પણ એમને ખૂબ હંમેશા એનો નિયમ છે કે જે તત્વને પકડતો હોય એના પ્રત્યે શિક્ષકમાં પણ સામાન્ય સમાજમાં પણ એમ છે કે એ શિષ્ય પ્રત્યે એને ખૂબ આદર ભાવ લે છે. એ રવિન્દ્ર ભયાને પણ એના પ્રત્યે ખૂબ ભાવ, પ્રેમ ભાવ, પરિણામ ભાવ ખૂબ હતો અને એમને આપી દેવાનો ભાવ એને ઘણો હતો અને એની ભીલવાની શક્તિ પણ હતી. એવો 12-13 વર્ષની ઉંમરે નાની ઉંમરે યોગ થયો. જેમ જેમ બેની ઉંમર વધતી ગઈ અને લગભગ 17-18 વર્ષની ઉંમર થઈ ત્યારે એમના માતા પિતાએ એમની શાદી કરવાની એટલે એવી શાળા આફ્રિકામાં એને સંપૂર્ણ વ્યવિચાર કરવામાં આવે, એ લોકો ત્યાં વ્યવિચારને સાદી કરે છે. એને ખૂબ દબાણ કરવું એક રતલામથી શેઠ અને એનો દીકરો પણ આવ્યો અને એના માતા પિતાને મૃત્યુ બહુ ગમી ગયો. આ દીકરી તમને ગમે તો અમારે તમારે ત્યાં આપતી છે. એ લોકો જોવાયા, એમને ખબર પડી ગઈ. એટલે આમ નીચું જોઈને બેઠેલી ઊંચી આંખે કરીને કોણ આવ્યું છે એ નજર. એ ગયા પછી એ કુમારી સંધ્યાએ કહ્યું માતાને કે તું જો ખરી મારી માતા હો તો મને તું આ સંસારમાં ધકેલવાથી બચાવી દે. મારે શાદી જરૂર કરવી છે, પણ મારે શાદી કોની સાથે કરવી છે કે જેની સાથે શાદી કર્યા પછી એનું મરણ ન થાય એની સાથે મારે શાદી કરવી છે. એ મારો નાયક દેવ, એ નાયક દેવની સાથે મારે શાદી કરવી. એનું કોઈ મૃત્યુ અવિનાશી તત્વ છે. માતાને ખૂબ સમજાયા, માતા પણ સમજ્યા કે આના ઉપર બહુ દબાણ કરવા જેવો આ જીવ નથી. પ્રથમથી વૈરાગ્ય હતો. એવામાં એવો એક ચમત્કાર એક બનાવ પણ બન્યો કે સહારાનપુરના આપણા જે ગુમુક્ષુ છે દેવચંદજી પંડિત, પંડિત દેવચંદજી છે, એ સોનગઢ અવાર નવાર આવતા હતા, ગુરુજીના પરિચયમાં હતા. અત્યારે પણ ઘણી વખતે અમારા પરિચયમાં કોઈ આવે છે, જ્યાં જ્યાં શિબિર હોય ત્યાં ત્યાં પણ પંડિતજી આવે છે. એ અમની 17-18 વર્ષની ઉંમર, એટલે આજથી 8 વર્ષ પહેલાની 9 વર્ષ પહેલાની વાત છે. ત્યારે પંડિતજી વ્યાખ્યાન આપ્યા પછી એ સમજી ગયા કે આ કોઈ જીવ જુદી જાતનો છે. એટલે પંડિતજીએ કહ્યું કે સંધ્યા, આ એક શ્લોક છે એનો તું અર્થ મને સમજા. ત્યારે કુમારી સંધ્યા કહે છે કે મને કાંઈ સંસ્કૃત આવતું નથી, હું કાંઈ પંડિત નથી, હું તમને શું આનો અર્થ કરું, આ મારું વાંચેલું નથી શાસ્ત્ર, હું તમને શું અર્થ કરું. તો કે ના, તને જેવો આવે એવો અર્થ તો કર. ત્યારે શાસ્ત્ર હાથમાં લીધું, શ્લોક જોયો અને પછી 1.5 કલાક સુધી એના ઉપર એને સ્પષ્ટીકરણ કર્યું. ત્યારે પંડિત દેવચંદજી મુગ્ધ થઈ ગયા. એ વાત પૂરી થયા પછી પંડિતજી કહે છે કે તને આવડતું હતું અને તે મને કહ્યું કે હું કાંઈ જાણતી નથી, આવું ખોટું ન બોલવું જોઈએ. ત્યારે કુમારી સંધ્યા કહે છે કે હું સત્ય બોલી હતી, મેં શાસ્ત્ર ઉઘાડીને જોયું નહોતું કોઈથી, મને એ શાસ્ત્રનું અધ્યયન પણ નહોતું, પણ એ જોઈને જ મને વિચારોની સ્ફૂર્ણા થઈ એ હું બોલતી ગઈ છું. ત્યારે પછી સંધ્યાએ એમ કહ્યું, કુમારી સંધ્યા કહે છે કે પંડિતજી આ બે એટલી વાત તમને કરીને એ અમારી પરિચિત છે એમ મને લાગે છે. આ વાત તમે નવી નથી કરતા. એ પોતે પછી પાછળથી આ પ્રમાણે બોલી. એટલે કહેવાનો આશય એ છે કે કોઈ ગુરુનો સંસ્કાર એને હોવો જોઈએ એમ ચોક્કસ અનુમાન થાય છે. અનુમાનના આધારે પણ થોડા છે. ત્યાર પછી હું એનું ઊંડાણથી સમયસર આદિનો અધ્યયન ચાલુ થયું છું. અને દ્રષ્ટિ નિર્મળ થઈ ગઈ, ભવનો અંત થઈ ગયો, અને બહુ થોડા ભવમાં અલ્પકાળમાં એ આત્માનો મોક્ષ થવાનો. સ્ત્રીના દેહને ન જો, પુરુષના દેહને ન જો, પણ આત્માની શક્તિ અચિંત છે. 8 વર્ષની ઉંમરે શાસ્ત્રમાં લેખ છે, 8 વર્ષની ઉંમરે સંગત શું થાય છે, ચારિત્ર વિકાર કરે છે, અને 8 વર્ષનો ભાવ નાની મોત પીછે ને નાનું કમરનું લઈને આવતો હોય ત્યારે હાલતો ચાલતો સીધા અને કેવું જ્ઞાન કરે. 8 વર્ષની ઉંમર આત્માની તાકાત અચિંત છે, દેહની તાકાત નથી, આત્માની તાકાત એવી છે. આજે એવું જન્મ છે, જન્મદિવસ હવે આ કહેવાનો ભાવ જે આવે છે એની પાછળ થોડો હેતુ છે. અમારી પણ હવે ઉંમર તે છે, અમારો કેટલો સમય આ ભરત ક્ષેત્રમાં છે એની જાણતા નથી, પણ સામાન્ય રીતે 70 વર્ષ શરીરને થયા છે. મારી તમને બધાને જણાવ છે, એક યુગનો પરિચય કરવા દે છે, એક યુગનો છે.
શરીર
આદિ પર દ્રવ્યો છે વિભાગ ઉલ્પાપ કર્મ શરીર આદિ છે વિભાગ વિશેષ કરીને જુદા પાડને કા સાધન ક્યા હૈ મે તો માનતા હું કે શરીર જીવ રાગ જીવ રાગી જીવ આચાર્ય ભગવાન ફરમાતે તારા જ્ઞાન હૈ તો જ્ઞાન નહીં હૈ તો શિષ્ય ને પ્રશ્ન ક્યા કે આત્મા હૈ કે શરીર આદિ ઉનપાત કા પરિણામ સે આદિ અધિક કે વ્રત અવ્રત કા પરિણામ વિકલ્પ સંકલ્પ વિકલ્પ સે જુદા ઇસે જુદા પાડને કા સાધન ક્યા હૈ આત્મા ઓર અનાત્મા કો જુદા પાડને કા અસાધારણ સાધન લક્ષણ ક્યા હૈ વિભાગ કા સાધનભૂત જુદા પાડને કા સાધનભૂત અસાધારણ સ્વલક્ષણ ક્યા હૈ આત્મા કા સ્વ અપના લક્ષણ ક્યા હૈ કે જો લક્ષણ કે દ્વારા દેહાદી સે આત્મા ભિન્ન પડ જાતા હૈ ભિન્ન પડ જાતા હૈ યાની અનુભવ હો જાતા હૈ એસા આત્મા કા જુદા પાડને કા લક્ષણ ક્યા હૈ ઉલ્પાપ સે ભિન્ન કરને કા સાધન ક્યા હૈ ઓર ઓ સાધન પ્રગટ હૈ ક્યા પ્રગટ કે પ્રગટ હૈ સુન જો વર્તમાન ચેતના લક્ષણ હૈ જીવ કા ઉપયોગ લક્ષણ વો પ્રગટ હૈ વો ઉપયોગ લક્ષણ કે દ્વારા વિકાળે સામાન્ય ભગવાન આત્મા ઓર વર્તમાન ઉનપાત કા પરિણામ ઉસકા દો કો બીચ મે પ્રજ્ઞાશ્રી માનને સે જુદા પડ જાતા હૈ એસે ચેતના લક્ષણ સે ચૈતન્ય પરમાત્મા દ્રષ્ટિ કો આયા ઓર ઉનપાત સે એકત્વ બુદ્ધિ છૂટ જાતી હૈ સાધન હૈ વો સુન બતાઓ કે સાધન બતાઓ અનિવાર્ય જીવ કે રસ રહે રૂપ રહે ગંધ રહે અવ્યક્ત ચેતના ગુણયુક્ત શબ્દ રહી લિંગ દ્વારા ગ્રહણ ન હોને યોગ્ય ઓર જિસકા કોઈ સંસ્થાન યાને આકાર નહીં કહા ગયા હૈ એસા જાનો આત્મા કા એસા જાનો યે આત્મા ઓર અસાદિ ભાવરૂપ હૈ અને કોઈ અન્ય લિંગ સે ચિન્હ સે સાધન સે આત્મા લક્ષ્મી આને વાલા નહીં હૈ તો ઓ જો આત્મા લક્ષ્મી આવે ઇસકા સાધન ક્યા કે ઉપયોગ સાધન હૈ ચેતના લક્ષણ સે આત્મા લક્ષ્મી આ જાતા હૈ ઉપર કા લક્ષ છૂટ જાતા હૈ એસી બાત કરતે સમય ઉદગલ તથા અપુદગલ કા રૂપ સ્વરૂપ સમર્થ અજીંદ્રિયો સે વિભાગ કા સાધન તો ચેતના ગુણમય હે સાધન લક્ષણ કિસો કહા જાતા હૈ કે જો જીવ મે પાયા જાય લક્ષણ ઓર પુદગલ ધર્માત્મિકા હૈ ધર્માત્મિકા હૈ આકાર કાળ મે નહીં પાયા જાય જીવ મે પાયા જાય અને અજીબે નહીં પાયા જાય ઇસકા નામ જીવ કા લક્ષણ હૈ તો જબ જીવ કા લક્ષણ જો રાગ કહો તો રાગ કો તો લક્ષણ હૈ નહીં ક્યુકે જીવમાં ભી વ્યાપે અને પુદગલ મે ભી હોતા હૈ ઇસલિયે અતિવ્યાપ્તિ નામ કા દોષ આતા હૈ ઓર દૂસરા એ જડત્વ લક્ષણ નહીં હૈ वो जड़ में है आत्मा में नहीं इसके ये लक्षण नहीं है दूसरा कि आत्मा का चेतना लक्षण ऐसा है कि जीव में है न अजीव में नहीं दूसरा ये चेत का लक्षण ऐसा है कि जीव की सर्व अवस्था में व्यापक है निगोद में भी चेतना है सिद्ध में भी चेतना है इसलिए इसमें अव्याप्ति अतिव्याप्ति और संभव दोष ना आवे उसका नाम लक्षण है, चेतना लक्षण। अभी उपयोग लक्षण है वो जीव का है, मगर अभी उपयोग लक्षण को मति ज्ञान उपयोग कहो तो उसमें सर्वावस्था में मति ज्ञान नहीं है, इसलिए मति ज्ञान आत्मा का लक्षण घटता नहीं है। और शुद्ध ज्ञान लक्षण कहो तो घटता नहीं है, किंतु चिद में नहीं है। और केवल ज्ञान लक्षण कहो, केवल ज्ञान तो वर्तमान संसारी जीव है, तो केवल ज्ञान तो नहीं है। तो ऐसा लक्षण होना चाहिए कि जीव की सर्वावस्था में अनादि अनंत हो, लक्षण हो, वो लक्षण इसमें न हो। दूसरा ये लक्षण है जीव का उपयोग लक्षण है चेतना। ये चेतना लक्षण के द्वारा जीव और अजीव का विभाग पड़ जाता है। समस्त अजीव प्रियों से विभाग का साधन तो चेतना गुरुमयी है, वही मात्र। अब आगे कहते हैं तो वही मात्र ओनली इतना ही लक्षण है। देह लक्षण नहीं, कर्म लक्षण नहीं, राग लक्षण नहीं, शुभ राग के अशुभ राग कोई लक्षण जीव का नहीं है। मात्र स्व जीव द्रव्य आश्रित जो चेतना है उपयोग लक्षण, ये स्व जीव द्रव्य आश्रित है। वो ज्ञान लक्षण स्व जीव द्रव्य आश्रित है, शास्त्र आश्रित नहीं है ज्ञान। जो ज्ञान लक्षण है उपयोग वो शास्त्र आश्रित नहीं है, शास्त्र से उत्पन्न नहीं होता है, अपना जीव द्रव्य आश्रित है। होने से स्व लक्षण को धारण करता हुआ आत्मा का शेष द्रव्यो यानी आत्मा सिवाय जुदा द्रव्य दिशा है दूसरा, उसका विभाग भेद जुदा सिद्ध कर देता है। यहां अलिग्राह कहनाई, वहां जो अलिग्रहण कहाई वह बहुत से अर्थों की प्रतिपाति प्राप्ति प्रतिपादन करने के लिए है। उनको भगवान ने अलिग्रहण कहा है मूल में, तो टीकाकार आचार्य भगवान ये फरमाते हैं कि अलिंग ग्रहण कहा, मगर अलिंग ग्रहण ग्राह्य कहने का आशय है, वो एक वचन है मगर उसमें से ज्यादा बहुत कहने का भाव है, छुपा हुआ है। तो वो आचार्य भगवान अलिंग ग्रहण का 20 फल बताते हैं, 20 प्रकार पार के होते कहते हैं। उसमें 20 में वो पहला शब्द है पहला, जिसका यानी कि आत्मा का लिंगों के द्वारा अर्थात लिंग का अर्थ अर्थात इंद्रियों के द्वारा अर्थात भाव इंद्रियों के द्वारा, भाव इंद्रियों की बात चलती थी बहुत, त्रिवेदी तो जड़ है, त्रिवेदी तो जड़ है, भाव इंद्रिय खंड ज्ञान उसमें जानने की क्रिया होती है उसका नाम भाविद्री है। वो जो भाविद्री प्रकट है, वो भाविद्री जो प्रकट है, ईसा जो लिंग है उससे वो भावलिंग की भावलिंग के द्वारा आत्मा पर को नहीं जानता है, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण यानी पर का जानना नहीं होता, वो अलिंग ग्रहण है। क्या कहा बात सुनो है, ये आत्मा है वो पूर्ण पाप से भिन्न है, परिणाम से भिन्न है, इंद्रिय ज्ञान से भिन्न है। इसे धारणा तक तो जीव आ जाता है, वो कोई नई बात अपूर्व बात नहीं है। वो जो धारणा किया वो धारणा भी सही होना चाहिए, मगर वो जो धारणा किया है वो आगम आश्रित है, દેશના લબ્ધિ આશ્રિત ઉસને ધારણા યાદ કે મેં ગાયક હું, અકર્તા હું, કરતા નહીં હું, મેં આઠ કર્મ છે ભીન હું, દેશ એ જુદા હું, મેં જાણને વાલા હું, કરને વાલા નહીં. વો જો આગમ કે અનુસાર, આગમ મેં જો બીજી બાત હૈ ઓર શ્રી ગુરુ ને કહા ઈસા એસી ધારણા કરી ગયા, મગર વો ધારણા આત્મા કા અનુભવ મેં કામયાબ નહીં. ધારણા હો ગઈ ઇસલિયે આત્મા કા પ્રત્યક્ષ અનુભવ હોતા હૈ એસા નહીં. વો અપની પૂંજી નહીં હૈ, વો પરાઈ પૂંજી હૈ. દૂસરા ને કહા મેં ધારી રખા, ધારણા સે કામ હોતા નહીં, ક્યોંકિ ધારણા પરાશ્રિત હોતી હૈ. કહા ગુરુદેવ ને કે નવ તત્વ સે ભિન્ન હૈ, છ દ્રવ્ય સે આત્મા જુદા હૈ, પુણ્ય પાપ સે ભિન્ન હૈ, આત્મા અનંત મુક્તિ હૈ, આત્મા જ્ઞાયક છે. એસે આગમ કે દ્વારા અર્થાત દેશના લબ્ધિ કે દ્વારા પ્રત્યક્ષ ગુરુ હો તો દેશના લબ્ધિ કે દ્વારા, પ્રત્યક્ષ ગુરુ કા યોગ ન હો તો શાસ્ત્ર કે દ્વારા. જેસા શાસ્ત્ર ને લિખા, સર્વજ્ઞ ભગવાન ને કહા, સંતો ને લિખા, એસી ધારણા કરી લેતા હૈ. વો ધારણા કી કોડી કી કિંમત નહીં, ધારણા કે ભરોસે રહેને વાલા જીવ આગે નહીં બઢતા. અપને તો આગે બઢને કી બાત હૈ, રૂકને કી બાત નહીં હૈ. જો રૂકાવટ કા પોઈન્ટ હૈ વો ઉસકો પોઈન્ટ આઉટ કરકે, ઉસકો ગાઉન કરકે, ઉસકે આગે બઢના હૈ, જાનકર ઉસકો આગે બઢના હૈ. ધારણા ને, ધારણા તો માનસિક જ્ઞાન હૈ, માનસિક જ્ઞાન તો હૈ મગર પરાશ્રિત હૈ. દૂસરા ને કહા ધાર લિયા, અપના તો અનુભવ ઉસમે મિલાયા નહીં હૈ, હા બોલ દિયા. ઓર સમજો કે મન માનસિક ધારણા હો ગઈ, કદાચિત આયુષ પૂરો હો ગયા અને ચાર ઇન્દ્રિય ત્રણ ઇન્દ્રિય મેં ચલે ગયા તો મન ભી ગયા, તો મન કે સાથ ધારણા ભી ચલે જાતી હૈ. ધારણા તો મન હૈ તાં તક આતી હૈ, ઇધર ધારણા ક્યા ઓર મન સે દૂસરે ભાવ મેં ગયા તો ધારણા સાથ મેં રહેવે, મગર મન છૂટ ગયા તો ધારણા છૂટ જાતી હૈ, ધારણા રહેતી નહીં હૈ. તો ધારણા પરાશ્રિત હૈ, અગમાશ્રિત હૈ, આત્માશ્રિત નહીં હૈ. અભી ધારણા સે એક પોઈન્ટ આગે, એક પોઈન્ટ સે આગે દૂસરા પોઈન્ટ હૈ. અભી દો પોઈન્ટ કી બાત કરની હૈ, એક પોઈન્ટ કી બાત ક્યા, તીન પોઈન્ટ બતાના હૈ. આજે કુમારી સંધ્યાબેન કા જન્મદિવસ હૈ ને, તીન પોઈન્ટ બતાને કા ભાવ વદર્શ આયા. કે એક પોઈન્ટ તો બતા દિયા કે ધારણા, ઓર ધારણા ભી સહી હોની ચાહિએ. વિરતી ધારણા કી બાત તો વો તો કોઈ કિંમત નહીં હૈ. આત્મા જ્ઞાતા હોને પર ભી કરતા માનતા હૈ પર પદાર્થ કા, વો તો ધારણા હી નહીં, વો તો તદ્દન વિપરીત બાત હૈ. કે મેં પર કો કરને વાલા હું ઓર પર પદાર્થ કા હોતા હૈ કાર્ય તો ઉસમે મેં નિમિત કરતા હું, વો તો ધારણા હી ગલત હૈ. ઓર મેં પુણ્ય પાપ કા કરને વાલા હું એસી ધારણા ભી ગલત હૈ, તો ધારણા ઈ જુટી હૈ. મગર જીસકો ધારણા સચી હો ગઈ, તો ધારણા કે ભરોસે રહે જાતા હૈ તો વહાં વો રૂક જાતા હૈ, આગે નહીં બઢતા. અપને કો તો આગે બઢકર આત્મા કી પ્રત્યક્ષ અનુભૂતિ કેસે હો વહાં તક જાના હૈ, વહીં બહુ કામ કરતા. ધારણા કે આગે એક दूसरा तेज है जो अनुभव के पहले आया, वो निर्णय, निर्णय यानी यथार्थ निर्णय। यथार्थ तो है मगर अपूर्व है, जो अनंत काल से नहीं आया ऐसा निर्णय आता है, उसका आश्रित है, धारणा पर आश्रित है। धारणा बहिर्मुख है, निर्णय अंतर्मुख है। ऐसा निर्णय आ जाता है कि ये निर्णय के बाद उसको अवश्य अनुभूति आती है, धारणा की बात अनुभूति आती नहीं है, इसके बाद तो अवश्य अनुभूति आती है। जैसे समय साल की 144 की गाथा चलती है, उसमें आचार्य भगवान ने पहली लाइन में लिखा कि प्रथम क्या करना, कि प्रथम ज्ञान स्वभाव या आत्मा का निर्णय करना। ऐसा नहीं लिखा कि ज्ञान स्वभाव या आत्मा को धार लेना, धारने की बात नहीं लिखी है, धारणा से आगे की बात लिखी है। तो कोई कहे कि ऐसा ज्ञान स्वभाव या आत्मा में हूं, वो तो मेरे को ख्याल है, ख्याल नहीं है या ये बात कोई पूर्व जुदी टाइप की है। मैं जानता हूं वो आत्मा को नहीं जानता है, और मैं जानता हूं वो आत्मा तक नहीं पहुंचेगा, मैं कुछ नहीं जानता। जहां तक आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव न हो तहां तक कुछ जानता नहीं हूं। ऐसा मन खुला रखे तो आगे बढ़ सकता है, भगवान रुक जाएगा। तो ये जो निर्णय है वो निर्णय अतीन्द्रिय ज्ञान में नहीं होता है, होता है भाव मन में। अतीन्द्रिय ज्ञान में तो अनुभव होता है, मगर जो तो वो निर्णय है वो ज्ञायक की ओर झुक कर निर्णय हो जाता है। वो निर्णय की भूमिका है, वो अपूर्व निर्णय है, वो आत्मा आश्रित है, अंतर्मुखी निर्णय होता है। अनुभव के पहले की बात बताता हूं, उसके लिए एक परिचाध्याय शास्त्र है, उसमें उसका खुलासा कि ऐसा निर्णय जो आता है जिनको, उसको हम कह देते हैं कि समय दृष्टि हो गया, हुआ नहीं मगर भावी नहीं गम नहीं उसमें लागू हट जाती है, क्योंकि अप्रत्यय भाव है कि समय पामे पामे ने पामे। तो प्रश्न होता है कि भाई ऐसे अपूर्व निर्णय क्या चीज है, जिसने निर्णय किया उसको बताना चाहिए, छुपाना क्यों छुपाता है, प्रश्न होता है। तो अपन क्या क्या फरमाते हैं कि भैया वो वचनातीत है, निर्विकल्प पद है और केवल अनुभव गम्य है। जिसको निर्णय आया वो ही जानता है, एक केवल जानता, तीसरा छद्मस्त जानता नहीं है, अने जानता हो वो भी कह सकता नहीं है। जानने वाला जिसको अपूर्व निर्णय आ गया उसको छुपाना नहीं है मगर कह सकता नहीं है। हा आत्मा का अनुभव हुआ, समय प्रश्न हो गया, वो तो कह सकते हैं, वो तो कह सकते हैं, मगर उसकी पूर्व भूमिका में जो अपूर्व निर्णय आया वो वचना, इसका कोई वाणी के द्वारा कही सका नहीं। ये तो वचना की केवल अनुभव गम्य, निर्विकल्प वर्त निर्विकल्प नहीं हुआ, निर्विकल्प हुआ नहीं अभी, मगर उसका निर्णय है निर्विकल्प वर्त है, निर्णय पड़ता नहीं है। और अनुभव के बाद भी उसका विचार पड़ता नहीं, जैसा देने आया था ऐसा अनुभव हो गया। प्रत्यक्ष अनुभूति और परोक्ष अनुभूति में किंचित मात्र फर्क नहीं, आनंद का फर्क है। एक दशा में आनंद नहीं है, दूसरी दशा में आनंद है, आनंद का फर्क है, इतना ही फर्क है। जैसा दृष्टि का विषय अनुभव के काल में आता है ऐसा अनुभव पहले लेने के काल में ऐसा आ जाता है, मगर धारणा वालों को भ्रांति हो जाती है कि मेरे को निर्णय हो गया। निर्णय अलग चीज है, धारणा अलग चीज है। संभव है धारणा वालों को मैंने निर्णय कर लिया, जैसा आत्मा है ऐसा निर्णय आ गया, मैं ज्ञान स्वभाव आत्मा हूं, मैं भी जानता हूं। नहीं भैया, धारणा अलग चीज है, अंतर्मुखी निर्णय को अलोकी की जुड़ी है। इसलिए धारणा के आगे जीव को निर्णय की भूमिका में आना चाहिए, निर्णय करना चाहिए ये मेरा स्वरूप कैसा है। ऐसा जो निर्णय बार बार विकल्पात्मक निर्णय आता है उसमें कोई जुदी जात का एक सूक्ष्म विकल्प के द्वारा निर्णय आ जाता है, जो वचना की है तो विकल्प निर्विकल्प वो नहीं है, तो भी निर्विकल्प बहुत है, फिरता नहीं है वो निर्णय। अच्छा हिंदी थोड़ी गुजराती चल गई,
आपका भाव देखने की नहीं।
ये जो शुद्धात्मा है, शुद्धात्मा सर्वज्ञ भगवान ने जैसा कहा, ऐसा अनुभव के पहला निर्णय आ जाता है और जैसा निर्णय आया ऐसा ही अनुभूति हो जाती है, और बीच में थोड़ा टाइम देता है, किसी को अंतर्मुख में अनुभव होता है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है। ऐसी कोई अपूर्व निर्णय की कथा है, यानी मेरा कहने का आशय यह है कि निर्णय और धारणा उसमें बीच में बड़ा तफावत है, छोटा तफावत नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है। निर्णय की भूमिका अलग है और धारणा की भूमिका अलग है। धारणा तो कर लिया, किसी ने सिखाया तो सीख लिया, किसने सिखाया तो सीख लिया। ऐसे तो 5 वर्ष का बच्चा भी सिखाओ तो सीख लेता है, मैं जानना हूं करना नहीं हूं, जानना हूं करना नहीं हूं, सिखाया हुआ है सीख लेता है, वो धारणा है, अपनी बुद्धि नहीं। अपने से अंदर में से कोई ऐसा अपूर्व भाव आता है कि वो निर्णय की भूमिका में आ जाता है, वो निर्णय की भूमिका वाला निर्णय को आदर नहीं करता है, एक गैग को आगर रखता है, निर्णय को पाछड़ रखता है, निर्णय पाछड़ रहता है, रह जाता है, रहते रहते अनुभूति आगर हो जाती है, निर्णय छूट जाता है। ऐसी निर्णय की कोई अपूर्व कीमत है, धारणा की कीमत नहीं है। 11 अंक तक बड़ा धारणा तो सही कर लिया, जैसे सर्वज्ञ भगवान ने कहा ऐसी धारणा करता है, एक दिन दूसरा दिन का नहीं करता है कि करता नहीं, बाप आत्मा का भी भाव स्वभाव नहीं है, वो मुद्गल का परिणाम है तो मुद्गल का परिणाम है, कर्मबंध का कारण है तो कर्मबंध का कारण है, निद्रा का कारण नहीं है रात तो नहीं है। इसे ऐसे नवतत्व का भेद की श्रद्धा और आत्मा का धारणा जैसा है ऐसा कर लिया, मगर यथार्थ निर्णय नहीं किया और धारणा को निर्णय मान लिया तो निर्णय की भूमि आने वाली, निर्णय की भूमि भूमि आएगी तो अनुभव। ऐसी बात है, लौकिक बात है। अभी वो आचार्य भगवान कहते हैं कि इंद्रिय ज्ञान से आत्मा भिन्न है, इसलिए जो जिससे भिन्न है इससे वो कार्य करने वाला नहीं होता है। इसीलिए हाथ को कट कर रख दो और हाथ को कहो कि चेक में से कर दो, नहीं कर सके। ऐसे भगवान अतिथि ज्ञान वही आत्मा, उससे इंद्रिय ज्ञान भाव इंद्रिय कर्म ज्ञान भिन्न है। तो जो अतिथि ज्ञान वही भगवान जो आत्मा है वो इंद्रिय ज्ञान से जानने का काम करता ही नहीं है, क्योंकि भिन्न है, पर को जानता नहीं है। इंद्रिय ज्ञान के द्वारा जो आत्मा पर को जाने उसको हम आत्मा नहीं कहते हैं, अनात्मा कहते हैं। इंद्रिय ज्ञान के द्वारा आत्मा पर को जानता है उसको हम आत्मा कहते नहीं, अनात्मा ज्ञान आत्मा है। पर को जानने के लिए भी इंद्रिय ज्ञान साधन नहीं है, सो को जानने के लिए तो नहीं है, तो दूसरा बोल में आएगा, पहला बोल चलता है कि आत्मा है। अतिंद्रिय ज्ञान में परमात्मा है, जो ये परमात्मा इंद्रिय ज्ञान के द्वारा पर को जाने, तो सिद्ध भगवान को परने जानने के लिए इंद्रिय ज्ञान चाहिए, और परमात्मा की बात तो इंद्रिय ज्ञान नहीं है, लोका लोग जड़ जाता है, तो इंद्रिय ज्ञान तो उसकी पास नहीं। तो जो सिद्ध भगवान पास नहीं है वो मेरे पास अभी नहीं है, जो सिद्ध भगवान पास अभी नहीं है तो मेरे पास भी अभी नहीं, मेरे से भिन्न है। जो सिद्ध भगवान अपने को और लोका लोक को जानता है, इसकी साधन क्या है, कहती है ज्ञान उसके पास है। तो मेरे को भी सौ और पर को जानने का साधन अतिथि ज्ञान ही है, इंद्रिय ज्ञान मेरा साधन, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान मेरे से भिन्न है। कहे थे पहला बोल मां कहते हैं परमात्म आचार्य महाराज, हे भूमि प्राणी देख कि इंद्रिय ज्ञान से जुदा पाने का साधन क्या है, कि चेतना लक्षण। ये ज्ञान परद्रव्य है, उसमें मथाला लिखा कि आजीव और देहादि शरीर आदि से भिन्न पाड़ने का साधन क्या, तो शरीर आदि में कर्म इंद्रिय ज्ञान द्रव्य इंद्रिय सब शरीर में हो गई, बाह्य तत्व बहिर्तत्व, उससे जुदा पाड़ने का साधन चेतना लक्षण। तो चेतना लक्षण स्वद्रव्यस्थित होता है, और जो उपयोग लक्षण है वो उपयोग लक्षण आत्मा के साथ जब अनन्य अनुभूति होती है तब इंद्रिय ज्ञान से मैं भिन्न हूं ऐसा भान होता है। इंद्रिय ज्ञान ले जाता है मगर इंद्रिय ज्ञान में ममता नहीं होती, इंद्रिय ज्ञान मेरा है, मैं इंद्रिय ज्ञान से मैं जानता हूं शास्त्र को, शास्त्र को जानने का साधन इंद्रिय ज्ञान नहीं है, देखना लब्धि सुनने का साधन इंद्रिय ज्ञान। तो अतिंद्रिय ज्ञान तो हमारे पास है ही नहीं, तो क्या देखना लब्धि नहीं सुनना, सुनने न सुनने का प्रश्न नहीं, तू समझ, सुनने नहीं सुनने का प्रश्न नहीं है, वस्तु क्या है, तेरे में श्रद्धा मिथ्या होगी, मिथ्या श्रद्धा निकालने का प्रयोग है। भाव इंद्रिय को छोड़ना नहीं, द्रव्य इंद्रिय को छोड़ना नहीं, किसी को ग्रहणा नहीं, किसी को छोड़ना नहीं, जैसा वस्तु का स्वभाव है ऐसा निर्णय करके अनुभव कर ले, इंद्रिय ज्ञान नहीं चीज नहीं है, तो मिथ्या तो टल जाएगा, इंद्रिय ज्ञान रह जाएगा, उसमें एकत्र बुद्धि छूट जाएगी, उसका भी ज्ञाता बन जाता है। चेतना लक्षण द्वारा अपने आत्मा को अनुभव में लिया तो इंद्रिय ज्ञान तो रह गई, क्षण भर तो रुक गई, जब अनुभव का काल आता है तब भाव इंद्रिय बंद हो जाती है और नया अतिंद्रिय ज्ञान उभरता है, उसके द्वारा आत्मा की अनुभूति होती है, और अनुभूति से बाहर आता है तो इंद्रिय ज्ञान जो भाव इंद्रिय चालू हो जाती है, फिर से उसका फंक्शन चालू हो जाता है, मगर वो इंद्रिय ज्ञान है वो ज्ञान का गेम बन जाता है। हाँ हाँ, एक पर्याय है वो मेरा ज्ञान नहीं है। इसे इंद्रिय ज्ञान से जुदा पाड़ने का साधन अतिंद्रिय ज्ञान, वही आत्मान अतिंद्रिय ज्ञान था तो जुदा पाड़ने का साधन है। अतिंद्रिय ज्ञान में आत्मा भी जुदा पाड़ने का साधन नहीं है। अतिंद्रिय ज्ञान में आत्मा का आश्रय से अतिंद्रिय ज्ञान प्रकट हुआ, उसने आत्मा और अनात्मा को जुदा पाड़ दिया। अतिंद्रिय ज्ञान में आत्मा तो सबके पास है, और इंद्रिय ज्ञान और राग को सबके पास पर्याय में है, तो जुदा पाड़ दिया ना आत्मा। आत्मा निष्क्रिय है, उसमें जुदा पाड़ने की क्रिया होती तो भी क्या करना, कि जो अतिथि ज्ञान में आत्मा है वो मैं हूं, वो मैं हूं, मैंपना ज्ञायक स्वभाव में आया, ऐसा जो अतिथि ज्ञान प्रकट हुआ वो अतिथि ज्ञान ने आत्मा और अनात्मा को जुदा पाड़ दिया। समर प्रकट हुआ उसने आश्रव को निरोध कर दिया। आत्मा का होने पर भी, आत्मा की अस्तित्व होने पर भी आश्रव का निरोध नहीं होता है। आश्रव का निरोध तो सोमवार का उत्पाद और आश्रव का व्यय, सम्यक दर्शन का उत्पाद विख्यात का व्यय, सम्यक ज्ञान का उत्पाद विख्यात ज्ञान का व्यय, तो जो सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है वो ज्ञाय के आश्रय से होता है, और मोक्ष अधिकार में वो बात लिया है कि आत्मा और मन वो दो को जुदा पाड़ने का साधन क्या है। आत्मा तो है, रागादि मन भी भाव मन भी पर्याय में है, उसका जुदा पाड़ने का साधन प्रज्ञा चाहिए है। प्रज्ञा यानी अंतर्मुख ज्ञान, वो जब अंतर्मुख ज्ञान होकर ज्ञायक में फिलहाल आत्मा ये रागादि मेरा नहीं है, ऐसा नया ज्ञान अनुभव ज्ञान प्रकट होता है, उसका नाम संवर है। वो संवर का उत्पाद हुआ तब आश्रम का व्यय होता है। एकीला ज्ञायक की सत्ता होने पर वो आश्रम का व्यय संवर का उत्पाद नहीं होता है, मगर मैं ज्ञायक हूं ऐसे मैंपना जब ज्ञायक में आया वो पर्याय है, परिणाम, वो परिणाम शुद्ध उपयोग है, और शुद्ध उपयोग ने आश्रम से जुदा पाड़ के अनुभव कर लिया। यानी परिणाम करके एक परिणाम का व्यय हो जाता है पूर्व पर्याय का। पूर्व पर्याय में जब अज्ञान है और ज्ञान प्रकट हुआ, ज्ञान आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान प्रकट हुआ तो पूर्व पर्याय में अज्ञान था उसका अभाव हो गया, और ज्ञान ने अज्ञान और आत्मा को जुदा पाड़ा। ज्ञान जो प्रकट हुआ उसने जीव तत्व और आश्रम को जुदा पाड़ दिया। जुदा पाड़ने का साधन चेतना लक्षण है, यानी पर्याय है, वो पर्याय आत्मा में जब अभेद होती है तब ये इंद्रिय ज्ञान से भी जुदा हूं, देह से जुदा हूं ऐसा भान हो जाता है, उस समय उसको अतिंद्रिय आनंद भी आता है। तो पांचवी पांचवी एक घंटा पूरा कर जिसका लिंगों के द्वारा अर्थात इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के बड़े इंद्रियों के द्वारा ग्रहण यानी जानना नहीं होता, ये भगवान जो अतिंद्रिय ज्ञान में आत्मा है वो इंद्रिय के द्वारा भाव इंद्रिय के द्वारा जानना नहीं होता। ये आंख से ये दीवार जानने में नहीं आती है, वो कान से शब्द सुनना नहीं होता है, ये जीभ से खाटा मीठा रस का ज्ञान नहीं होता है, इसे जो भाव इंद्रिय खंड ज्ञान है
वो आत्मा उसके द्वारा जो जाने तो आत्मा और इंद्रिय ज्ञान एक हो जाता है, वो तो विभाग होता नहीं, उसका नाम अज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान को मेरा मानना और अतिद्रिय ज्ञान में भजा भगवान आत्मा को दृष्टि में से छोड़ देना और एक समय की जो ज्ञान की पर्याय भाव निरीक्षण ज्ञान है उसको मेरा मानना, उसका नाम ज्ञान ने मिथ्या तो संसार का कारण है। उसको जुदा पाड़ने का साधन चेतना लक्षण है, यानी अंतर्मुखी उपयोग हुआ, शुद्ध उपयोग हुआ। शुद्ध उपयोग में आत्मा जानने में आया कि मैं तो इंद्रिय ज्ञान में आत्मा हूं, ऐसे ज्ञान प्रकट हुआ, उसने जान लिया कि इंद्रिय ज्ञान मेरी नहीं है, देह मेरा नहीं है, देह रह जाता है ममत्व छूट जाता है, राग रह जाता है ममत्व छूट जाता है, भाव इंद्रिय रह जाती है ममत्व एकत्व बुद्धि छूट जाती है, बस इतना है। बाद में लीन होता है तो लीन होते होते भाव इंद्रिय का अपना अभाव होकर के ज्ञान प्रकट होता है, नहीं होता है वो अलिंग ज्ञान है। इस प्रकार आत्मा तो आत्मा का स्वरूप क्या है कि अतीन्द्रिय ज्ञानमय है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। जिसको ऐसे बैठे कि इंद्रिय ज्ञान मेरा नहीं है, उसको अंतर्मुख होकर आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञानमय है ऐसा 20 अर्थ में से एक अर्थ की प्राप्ति होती है जो निषेध करता है कि इंद्रिय ज्ञान से मैं पर को जानता नहीं हूं। नवी बात एम नहीं कहता कि हूँ जाणु छू ने सांभळेली छे, नहीं कहता ऐसा होना चाहिए। तो नई बात ख्याल में आ रहे कि ये बात कोई अपूर्व लगती है, अपूर्व लगनी चाहिए। मैं सुनी है इंद्रिय ज्ञान तो भी नहीं, नहीं 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 ये सुनी नहीं है, सुनी है इसका अर्थ नहीं सुनी है, मगर मैं नहीं सुनी है तो काम हो जाएगा ये बात नहीं है। ओ इंद्रिय ज्ञान से मैं पर को जानता नहीं हूं, ये क्या बात, ये आंख से ये पंखा हिलता है जानता हूं कि नहीं, आंख से जाने ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं तो आत्मा पराधीन हो जाएगा, क्योंकि जब आंख नहीं मिलेगी तो ज्ञान का अभाव हो जाएगा। आंख से जानता है हा, तो आंख नहीं मिले तो नहीं जानता है कि नहीं जानता हूं तो ज्ञान का ही अभाव होगा, क्योंकि आंख तो मिलने वाली है ही नहीं, सिद्ध परमात्मा होता है तो आंख कहां है, वो ज्ञान का ही निषेध करता है। वो कहे कि भाई मैं आंख से पर को नहीं जानता हूं, नहीं जानता है तो मैं अंधा हो जाऊंगा, नहीं तो देखता हो जाएगा, क्या मार्मिक बात है। संजय किशोर भाई भैया दीदी जैन साहब
इन लोग को देखने वाला
ज्ञान चक्षु अंदर से उभर जाएगी, ये चर्म चक्षु बंद होगी तब आंख से तुम देखता नहीं, मैं आंख से देखूंगी तो मैं अंधा हो जाऊंगा, तो अंधा नहीं हो जाएगा तो देखता हो जाएगा। अभी अंधा है, अभी तू आंख से देखता है ने तो अंधा है, ऐसा बनाव बन गया है, ऐसा बनाव एक बन गया, धर्मदास सुलभ हो गया सुलभ कारंजा में गया, वो घूमते 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 वहां भटक रखा, तो किसी ने कहा सब घूमते थे कि भगवान का दर्शन करना है, भगवान का दर्शन करता, कोई कहे के गिरनार जाओ, कोई कहे के पालीताना जाओ, कोई कहे के समय शिखर की शोभा यात्रा कर दो भगवान का दर्शन हो जाएगा, कोई कहे आज उपवास करो तो भगवान का दर्शन हो जाएगा, ऐसे सब कहे तो कहे जाए भगवान का दर्शन। जब विरार में गया तो पूछे जब गांव में कि भाई इधर कोई जानने वाला है, मेरे को भगवान का दर्शन करना है, मेरा कोई विजय काम है, तो एक भाई ने बताया कि ये कारंजा में
देवेंद्र तीर्थ के भदारक रहते हैं और गुजर है और समयसार का पाठी है। लगभग 85-90 साल का बुजुर्ग है। अच्छा, तो वहां गया और विनय पूर्वक वंदन करके बैठा और पूछा, बाप जी मेरे को भगवान का दर्शन करना है, मैं तड़पता हूं, भगवान का दर्शन होता नहीं, एक क्या सब बता दिया, उसने लिया उसने। अच्छा, उसने प्रश्न पूरा कर दिया। बाद में भटारक ने कहा, क्या अंधा है देखने के वाला को देखता नहीं है? यार ये आप तो मेरी ये बोले नहीं, जो मन में विचार के विनय तो है ना, ऐसा क्या बोलती कुछ समझ में नहीं आता है। मेरी आंख है, वो मेरी आंख को देखता भी है और कहते हैं कि तो अंधा है देखने वालों को देखता नहीं, ये क्या है? 5 मिनट विचार किया शांति से, समझ में नहीं आया कि क्या है। फिर पूछना पूछा कि बाप जी आपने जो कहा मेरी समझ में नहीं आया, कृपा करके फिर से मेरे को बताओ। तो दूसरी दफे क्या था, क्या देखने वालों को देखता नहीं है? ये मैं ही देखने वाला हूं, देखने वाला कहा है, मैं ही देखने वाला हूं, देखने वालों को देखता नहीं है तू। उसकी दृष्टि फिर गई, बहिर्मुख कर्मुख हो गया, वहां के वहां सब प्रश्न हो गया। सांभा लापा होकर वंदन किया हो, ऐसा इसे लकड़ी लागे पड़ जावे ने साक्षात अडंबर गुरु समझ गया और उसको दर्शन हो गया। क्या हुआ? भगवान का दर्शन हो गया। क्या अंधा है देखने वालों को देखता नहीं, जानना जनो तो नहीं तने आज ना इसे, जानना जनो तो नहीं तने आज ना इसे, जानना जनाई से आई जाने, जानना जनाई उसे पहला विकल्प माने पति निर्विकल्प माँ, विकल्प माँ जानना जना से, क्या रे निर्विकल्प माँ जानना जनाई से, विकल्प माँ आज ना इसे, क्या होगी निर्विकल्प मन वो सवनो।